साकार एक निराकार। दुनिया में जाइए लाइब्रेरी में दुनिया भर में किताबें खरी रही होंगी। लोगों ने इस टॉपिक को बहुत बहतेरा सोचा। सच्चाई है जब तक आप साकार को नहीं देखेंगे तब तक निराकार पर पहुंच ही नहीं सकते, चाहे वो कितने ही वो हो। संतों में साकार गुरु रूप है, निराकार ईश्वर है। जब आप अपने को गुरु में लय कर देंगे, उसी के रूप को देखते रहेंगे और जहां उस रूप खत्म हो जाएगा वहीं से निराकार इस सबसे सूक्ष्म होगा। हरेक की आत्मा में वही अंश है जो ईश्वर में है, जो परमपिता परमात्मा में है। लेकिन जब तक हम उसकी कवरिंग को नहीं हटाएंगे तब तक अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते तब तक ईश्वर का भी अनुभव नहीं कर सकते। हरेक को जीवित गुरु का सहारा लेना पड़ता है। सत्संग में चार ही तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने कहा चलो भाई ईश्वर का नाम ले लिया जाए, शायद हमारी दुनिया बन जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई वो नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं एक अच्छी सोसाइटी है जिससे हमारा सदाचार व्यवहार हो सकता है। पंच बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के जानने की इच्छुक होते हैं कि हम आखिर कहाँ हैं, कहाँ से आए, कहाँ वापस जाए। और 0.8% ऐसे लोग होते हैं जो लक्ष्य की प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही 0.1% को सक्सेस होती है, बाद बाकी ये रास्ते पर चल रहे हैं। कब तक चलते रहेंगे ये ईश्वर बेहतर जानता है, ये उनकी स्पीड पर है, उनके बल। खाली आप 3 महीने करके देख लीजिए और आपको अगर परिवर्तन न हो तो हमसे कहिए कि हर वक्त अपने गुरु के रूप का ध्यान करते रहे। हर वक्त मतलब 2 वक्त नियम बांध लीजिए, बाद बाकी खाते पीते चलते पढ़ते और ओम का जाप करते रहिए, जिसकी बराबर यहाँ ठेस देते रहे। आप खुद देखेंगे कि आपका ग्रॉस परिवर्तन हो जाए। खाली 3 महीने, वर्षों का हिसाब नहीं है, 3 महीने का। सहारा हमेशा गुरु का लेना पड़ेगा। बुजुर्ग सब दर्शन देंगे, जैसा कल आपने कहा कि लाला जी महाराज साहब के दर्शन हो तो क्या करें। रामायण में लिखा बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो मिला, तब भी गुरु ही को आपको वो करना पड़े। अगर वो नहीं होता आपको गोविंद मिलते ही नहीं, लाला जी महाराज साहब के दर्शन होते ही नहीं। तो एक सीढ़ी मजबूत कर लीजिए और बची हुई सीढ़ी अपने आप को मजबूत हो जाए। इतने लोग बैठे बाबू कुछ नहीं ये कहा बेटे साल में फतेहगढ़ जाना, अपने गुरु की सीढ़ी को मजबूत कराया। इसके अलावा किसी से कुछ नहीं, बची हुई उनकी दया थी, बची हुई उन बुजुर्गों की दया थी। हम लोग भी पहले कानपुर नहीं जाते थे, कि चाचा जी महाराज साहब की दया थी, उन्होंने भाई श्यामलाल तुम तो बगैर मिले हमसे नहीं गए, क्या तुमने अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तब से जाने लगे। फिर एक नहीं सब, जैसे अच्छा स्टूडेंट कहीं भी पहुंचेगा उस पर हर शख्स मेहरबान। पहले रह रहे के करते हैं, हर एक घंटे बाद, पांच मिनट बाद, जिसको जैसी सुविधा हो, लेकिन असल अभ्यास यही है कि बराबर अपने गुरु का रूप का ध्यान करता रहे और बराबर ओम का जाप करता। फिर जब एकादशी पड़ जाए कि हर वक्त आपको हर शख्स में वही खुली आंखों से दिखाई पड़े 24 घंटे, तब ये समझिए कि आप में उसमें कोई फर्क नहीं। इस पर टाइम देता है, टाइम वही शख्स लेते हैं जिनको जितना समय इस पर कन्विंस होने में लगता। लेकिन सब कुछ होते हुए ईश्वर में पूर्ण रूप से वो क्वांटिटी है, कितनी नजदीक हो जाए गुरु ईश्वर का रूप हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे अंश और अंशी हमेशा फर्क रखते हैं, इसीलिए उसने बड़ी एहतियात की। बची हुई जितनी क्रियाएं हम करते हैं, जाप है, दान है, पुण्य है, ये सब इसलिए करते हैं कि हम अच्छा, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग उस रास्ते पर चलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी बड़ी जरूरी है, बगैर इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों ने इसी को लक्ष्य समझ लिया कि ये असल है, ये असल तो है ही नहीं। असल यही है कि हम किस तरह से अपनी आत्मा का साक्षात, और इसके लिए हर व्यक्ति को वही करना पड़ेगा जो उन बचा हुआ ये जितने बताए गए हैं सब रास्ते हैं, क्योंकि कोई भी कन्विंस नहीं। कुछ लोग ऐसे जो सत्संग में भी नहीं आते हैं और बहुत भले हैं, कुछ ऐसे जो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं लेकिन बहुत गिरे हुए, उनके विचार भी बड़े गिरे हुए, इसलिए कि उनका लक्ष्य ही नहीं था इस तरह। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटे हमसे मत पूछा करो कभी, अपना असेसमेंट खुद किया। बाबूजी ने भी लिखा, असेसमेंट खुद होता है। टीचर करेगा तो वो आपसे हर तरह के सवाल करेगा, आप बता देंगे तो वो उसी चीज पर ध्यान देगा जो वो है। और इसी को कहते हैं गुरु के सामने नंगे होके जाए। नंगे का मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार दिए, बहुत से लोग कपड़े उतार के पूजा करते हैं। नंगे का मतलब ये है, या तो आप थॉटलेस हो या जो आपके मन में हो उसे कहिए। जो चीज भी मन में हुआ वो हटेगी नहीं जब तक आप उसको हटाएंगे। जितनी बाधाएं हैं वो हमको दूर करनी पड़ेंगी। गुरु प्रार्थना कर सकता है, लेकिन करना मनुष्य काम कर्म जो है वो मनुष्य को करना पड़ता है। वो कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। आपके कर्म से वो हो गया, गुरु खुश होता है और वो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रार्थना के बाद दुआ करता है और जब ईश्वर की तरफ से इशारा होता है तो वो आशीर्वाद देता है, उससे पहले वो भी नहीं देता। तो हमें फिलॉसफी हाउस में नहीं, बस खाली एक चीज ये है कि हम किस तरह से अपने गुरु के रूप का ध्यान करते रहें और ओम शब्द का बराबर जाप। जो लोग राम का कर चुके हैं, कोई हर्जा नहीं, गलत नहीं किया उन्होंने, उसमें ऐड जरूर कर ले ओम राम। पूरा शास्त्र उठा के देख लीजिए, हर मंत्र में ओम है, तो कोई ना कोई तो खासियत होगी। हर मंत्र में राम नहीं है, राम मीन्स राम से इस टोटल स्कूल है, खाली 12 चक्र का रेस्पॉन्स है। ओम जो है वो पूरा सृष्टि का धाता है, तो हम क्यों उसमें। लेकिन जो आदत पड़ी है वो आसानी से नहीं है, इसलिए छोड़िए कुछ मंत्र, इसमें ऐड करते चले जाते हैं। पहले एक ही प्रार्थना होती थी, है दीन बंधु वाली, भजन हो गए, उसके बाद वो हम लोगों ने छोड़ी नहीं, ऐड करते चले गए, सबका भला करो, सबका ये करो। हर जगह, किसी जगह देख लीजिए, हर जगह तो परमार्थ में कोई चीज छोड़ी नहीं जाती, छोड़ी जाती है वो अपनी बुराइयां छोड़ी जाती है, बुरे ख्याल छोड़े जाते हैं, बुरी आदतें छोड़ी जाती हैं, और यही त्याग कहलाता है। उनकी तरफ ध्यान न जाए, यही बैराग है। ये बैराग नहीं है घर से छोड़ के भाग गए और आपने कहा साहब हम बैरागी हो गए, पढ़ाओगे। पर पूज लाल जी महाराज साहब के पास एक सन्यासी आए, बाकी बात तो कुछ हुई, तुमने कहा भैया सन्यास क्या करोगे, तीन तीन बीवी रखे हुए हो। बड़े नाराज हुए उन्होंने, शाम के वक्त लालजी महाराज साहब से शिकायत की। तुमने चाचा जी बुलाया, बोले भाई क्या बदतमीजी करते हो, तुमने सन्यासी जी से कह दिया आप ब्रह्मचारी हैं, तीन तीन बीवी रखे हुए हो। तो बस वो यही जानते थे जी श्रीमान जी गलत हो गई, गलती हो गई, इसके अलावा बाबू जी बताते थे बेटे कोई चीज जानी नहीं। उन्होंने कहा जाओ भाई सन्यासी जी पूछ लेना जरूर। तो जब रात हुई तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा देखो भाई एक बीवी तो तुम्हारा मन खुद का है, दूसरा जो है बीवी तुम्हारी असली बीवी है जिसके लिए तुम झूठ बोल रहे हो, और तीसरी बीवी जो है वो तुम्हारी बीवी का मन है, तो इसीलिए मैंने उनसे कहा। तो हमारे यहां कोई चीज छोड़नी नहीं है, त्याग और जो करना है वो अपने मन को रेगुलेट करना है। और इसीलिए जो लोग आसानी से इसको, दो ही चीज का दान दिया जाता है, एक तो समय का और दूसरे मन का, निज मन का मतलब जहाँ से विचार उठते, मन कुछ नहीं है, हमारे ही विचार अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी हो सकते हैं, इसी का गुरु को दान दिया जाए। और यही अष्टावक्र जी ने जनक जी से पूछा कि तुम्हारे मन में ये विचार कहाँ से आया कि हमें दीक्षा दी जाए। उन्होंने कहा मन से, उन्होंने वो तो तुमने हमको दान दे दिया। तो हमें तो आपको ये देखना है कि हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। ये मत देखिए चल रहे हैं चलते रहेंगे तो आप हमें तो किसी ना किसी को थक के बैठ भी जाएंगे। तो थकने से पहले लक्ष्य की प्राप्ति कर। गुरु कहने लगे बेटे तुम कुछ मत करो, अब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और इसलिए बार बार कह रहे हैं सब कुछ छोड़िए, जिन जिन के फोन आते हैं वो यही आते हैं हम सब इतना जाप कर लेते हैं तबल, तो कहा तुम तो मन के मुकाम पे, मन से तो ऊपर बढ़े ही नहीं। और दो वक्त भी वो समझते हैं कि हमने बड़ा ईश्वर पर एहसान कर दिया। एहसान तो ईश्वर कर रहा है कि तब भी तुम्हारा ख्याल रखते होंगे। जब तक 24 घंटे नहीं इस हालत को पैदा करेंगे तब तक दूर दूर तक कोई भला नहीं है। और यही लाला जी महाराज साहब का कि हमारा कोई समय नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त जाप करते रहते, कोई समय वो ईश्वर के ख्याल से खाली नहीं है। तब ये अवस्था प्राप्त की, आज इतने साल बाद भी अपने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में उनका, हमें उन्हीं सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी ही शादी में जिसमें वो नौते बने हुए थे और जब प्रोसेस नाच रही थी उस वक्त भी 72 घंटे 3 दिन पहले बरात रुकती थी, वो अपने गुरु के ख्याल से किसी वक्त था। तब उन्होंने लिखा अगर कोई मनुष्य 72 घंटे मुतबातिर अपने गुरु के ख्याल में रहता है तो उसका उस गुरु में डर। हम लोग तो आपसे कह रहे हैं 72 घंटे न रह पाए, रह रहे के रह लीजिए, बिगिनिंग में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि लोगों ने करके दिखाया। तब फिर गुरु आपकी जिम्मेदारी है। ये लोग कहते हैं हम साहब गुरु जी पर सब छोड़ दिया, ये सब वो चीजें हैं जो बेमानी है। आप भी तो कुछ करें। और यही कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है अगर मनुष्य मेरी तरफ एक कदम चल के आता है तो मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं। तो कौन किसने ज्यादा किया, ईश्वर ने ज्यादा किया कि आपने ज्यादा किया? लेकिन जब आप चले ही नहीं रहे हैं तो इसमें ईश्वर क्या जिम्मेदार? ईश्वर को बेजरूरत हम गुनहगार क्यों बनाते? हम चले और वो दया ना करे तो वाकई में होंगे, लेकिन हमारे चलने से ही वो 100 कदम चलता। ये जो झूठी दुनिया हम अपने चारों तरफ बनाए हुए हैं जो हमारे साथ नहीं आई थी और न जाएगी और उसी में फंसे रहे, कौन इस दुनिया को लेके आया था? सब हमने ये नींव बनाई और यही बैराग है चाली तौर से इसको सबको छोड़ दे। इसके अलावा कोई बैराग ने किताबें भरी पड़ी है, खाली ख्याल से ही हम अटेस्ट है, उसी ख्याल को छोड़ दी। हर शख्स जानता है कि हमारी वापसी होनी है, हमें मरना है, ये शरीर छोड़ना। लेकिन उसके छोड़ने की तैयारी कोई नहीं करता। तैयारी यही है कि हमें किसी से कुछ नहीं, सिवा हमारे साथ ईश्वर का नाम हो, हमारा गुरु हो, और हमें कुछ नहीं। सबसे बड़ी तैयारी यही है। जो चीज आपको ईश्वर से मिलाती है उससे डरना क्या? एक उसमें लिखा उन्होंने, मौत से डरो मत, उसका स्वागत करो, यही तो वो चीज है जो तुम्हें रब से मिलाती है। लेकिन डर तब लगता है जब हमारी तैयारी नहीं होती। जो लड़के इम्तिहान में वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं उन्हें कुछ भय नहीं लगता, जो आधे तैयार होकर जाते हैं उन्हें भय लगता है कहीं दूसरा चैप्टर ना आ जाए, और जो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जाते हैं उनका फेल होना निश्चित, चाहे वो किसी स्कूल से हो। इसलिए पूर्ण रूप से इससे अच्छी कोई वो नहीं हो सकता, इससे सहल तरीका नहीं हो सकता, जिसमें आपको न किसी आसन की जरूरत है, चलते फिरते भंडारे के वक्त साल भर की कमेंट्री सुनाते थे, पिताजी इसको मारा, इसके साथ ये किया, तो जब कभी उन्होंने बेटे ये गलत किया, अच्छा ये बताओ जब तुमने इसको किया था तो तुम्हें हमारा ख्याल था कि नहीं? उन्होंने नहीं, तो उन्होंने बेटे फिर जरूर गलती। खाली वही बताना चाहते थे कि हर वक्त हमारे ख्याल में जो अच्छाइयाँ थी वो बड़ा अच्छा किया बेटे तुमने, ये कर दी। तो हमें तो बस तीन चीजों का ध्यान रखना है कि किसी वक्त हम गुरु के ख्याल से गाफिल ना हों, इसके लिए हमें उनके रूप और उसका वो करना, बेईमानी के खाना खाने से बचना, गैर जिंस की सोबत से बचना, और ऐसे लोगों की सोबत है उठाए जो परमार्थ, सत्संग और भंडारे बराबर रखे। एक व्रत है आपके मन में हुआ गया, फिर मन हावी हो जाए, उन्हें चलो आज नहीं फिर कभी मिल लेंगे, चलते एक बार तक चल दिए तो फिर गुरु रिस्पॉन्स मिले, और जब तक ये तड़प नहीं होगी तब तक गुरु की नजदीकी नहीं आ सकती। हम और भाई साहब हाई स्कूल के बाद आगरा पढ़ने चले गए, पहली बार तो भंडारे में आए तो दौनकौर पर गाड़ी रुकती थी, 12-1 बजे का वक्त था, थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठे, तड़प एक ये थी कि इतने पास आ गए कि उन्हें चल के गुरुदेव के दर्शन किए। सामान ज्यादातर एक झोले में रहता था जिसमें कमीज बनियान रहती थी, धोती उन्हीं की और बाबूजी की मांग के पास रहती थी। चल दिए, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कुत्तों ने भूखना शुरू किया, सियार बोलने शुरू किए, दहशत वालों में बिजली वाला टाइम नहीं, ऑटोमेटिक ये जिसे हम और आप इक्का कहते हैं वो भी जो लगा हुआ आया, उसने बगैर कहे पूछा, भैया सिकंदराबाद चलोगे? हम लोग बैठ गए, सिकंदराबाद ला के छोड़ दिए, एक पैसा नहीं लिया। बोले आज हमारी ज्यादा जल्दी यहाँ खुल गई थी। वहां पहुंच गए फिर ये ख्याल हुआ कि अगर खटपट होगी तो गुर्दे उठ जाएंगे। पहले वो पटरे वाली केवाड़ होती थी, उसमें झांक के देखा आप आंगन में टहल रहे, बड़ी खुशी हुई। आपने केवाड़ खोली, हम लोगों ने पहले छुए, बताया गुरु शिष्य का रिश्ता ही नहीं था। फौरन पूछा, अरे आप अभी तक जगह नींद नहीं आई? उस वक्त आपने एक सेंटेंस कहा कि बेटे सोता तो तब जब तुम लोगों ने मुझे सोने दिया होता। सुबह लोगों ने बताया तो उस वक्त से ये माला फेर। अब बोले बेटे आइंदा ऐसा नहीं करते, रास्ता ठीक नहीं था, ईश्वर ने बड़ी दया की। फिर सब गुरु रिस्पॉन्सिबल होता, आपका कुछ नहीं। लेकिन ये तड़प भी पैदा करनी पड़ती है, कर्म भी आपको करने पड़ते हैं, ये सब अभ्यास ही कर। इसके बगैर संभव हो। तो कोशिश यही करिए कि इस जीवन में हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। लक्ष्य हमारा यही है कि हमको अपनी आत्मा का साक्षात, जिसके लिए जितनी कवरिंग है वो हमें हटानी है। हमारे आत्मा पर कौन कौन सी कवरिंग है ये इंडिविजुअल आदमी जानता है, तो उसका कहाँ अटैचमेंट है, क्या है। तो उसी को, उसी के हिसाब से मेहनत करें।